सभी एक साथ फिर से ओम शांति। पिछले 2-3 दिनों से राजयोग से संबंधित आप बहुत कुछ सुन रहे हैं। राजयोग क्या है, राजयोग कैसे करें, राजयोग से क्या अनुभूति हमें होती है, ये सब बातें हमने कई सत्रों में सुनी। अब है कि राजयोग से हमारे जीवन में क्या लाभ होता है। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में सुख हो, शांति हो, प्रेम हो, खुशी हो, भाईचारा हो, एक दो के प्रति सद्भावना हो, दया हो, रहम हो, कल्याण की भावना हो, तो ये समाज कितना सुंदर बन जाए। परंतु आज वो स्थिति नहीं है। क्यों नहीं है? चाहते जरूर हैं, परंतु है नहीं वो स्थिति, क्योंकि ये सद्गुण नहीं है। और ये सद्गुण क्यों नहीं है? चाहते हैं तो भी ये सद्गुण क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इनको जीवन में उतारने की शक्ति नहीं है। जैसे कई बार हम देखते हैं एक कमजोर व्यक्ति है, अब बेचारा वो चाहता तो बहुत है कि मैं चलूं, दौड़ूं, ये काम करूं, वो काम करूं, ये उठाऊं, वो उठाऊं, अंदर में लगन है, परंतु शक्ति नहीं है, तो बेचारा चल भी कैसे सकेगा? टांगों में ताकत ही नहीं है, न टांगों में ताकत है, न हाथ में ताकत है, तो ताकत ही नहीं है, हाथ कांप रहे हैं, टांगे कांप रही है, तो चाहते हुए भी वो नहीं कर सकता है। चाहता नहीं, ऐसी बात नहीं है, परंतु शक्ति भी तो चाहिए ना वो करने की। एक होता है किसी बात को करने लिए ज्ञान, दूसरा होता है उसके लिए अंदर में हिम्मत, और तीसरी बात है तो उसके लिए शक्ति। हिम्मत भी है, कोशिश भी कर रहा है, पर शक्ति नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जीवन में शांति हो, हम चाहते हैं कि हम गुस्सा न करें, हम चाहते हैं कि हमारा व्यवहार सबसे अच्छा हो, मित्रता बनी रहे, हम किसी को दुख न दें। चाहना बहुत अच्छी है, और कभी कभी हिम्मत भी करते हैं ये सब करने की, परंतु कितनी बार असफल हो जाते हैं, चाहना वहीं रह जाती है और कार्य तो गलत ही हो जाता है। तो वो शक्ति कहाँ से आए जिसके अभाव में चाहना होते हुए, हिम्मत करते हुए भी हम असफल हो जाते हैं? वो कौन सी शक्ति है जिसके अभाव में हम देख रहे हैं कि आज घर घर नरक बन चुका है? कहाँ वो भाई भाई का प्यार हम सुनते आए हैं, वो प्यार कहाँ खत्म हो गया है? माँ बेटी का, बाप बेटे का, भाई बहन का जो वो शुद्ध प्यार था, वो कहाँ चला गया? जो घर घर स्वर्ग कहलाता था, भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी, कहलाता था ना, जहाँ दूध घी की नदियां बहती थी, राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी, जिए दाता, धर्म का उपकार है। ये धर्म का उपकार हमारे भारत का ही गायन है। पर ये सब क्यों लुप्त हो गया और आज घर घर नरक क्यों बन गया है? क्यों महाभारत का वातावरण फिर से आ गया है? क्योंकि आंतरिक शक्तियां खत्म हो गई है, और उसके बदले में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष नफरत वैर दुश्मनी ने जगह ले ली है। तो कैसे ये शक्तियां वापस आए? तो जैसे आपको बताया कि कमजोरी है तो उसकी दवाई है, डॉक्टर देता है कि कैसे ये कमजोरी मिटे, परंतु पहले मालूम तो हो कि इसका कारण क्या है। इसीलिए कारण जानते हैं, जानने के बाद फिर दवाई मिलती है उसी अनुसार। तो इन शक्तियों के अभाव का कारण है या जीवन के मूल्यों के अभाव का कारण है देह का अभिमान। और जब जीवन से मूल्य चले गए तो मानो जीवन भी खत्म हो गया। जीवन का मूल्य ही तब है जब जीवन में मूल्य है, और मूल्य गए तो जीवन भी गया, ये समझ लो। और ये मानव जीवन जो हीरे तुल्य जीवन गाया गया है उसे हम कौड़ी के बदले गंवा रहे हैं। कई बार लगता है कि जानवर भी कम से कम मनुष्य से अच्छे हैं कई बातों में। कम से कम जानवर उस रूप से तो बदला नहीं लेते जैसे मनुष्य लेते हैं। शेर भी अपना भोजन या के लिए किसी को मारता है, वो भी तब मारता है जब उसको भूख होती है। ये नहीं है कि भूख नहीं है तो भी किसी को मारेगा, नहीं। हमें याद है हम वो जूनागढ़ के पास जो गिरनार गिर फॉरेस्ट है ना, तो हम वहां गए थे शेरों को देखने के लिए। तो अंदर गए, हमने बिल्कुल नजदीक से शेर को देखा, बिल्कुल देख रहा है वो हम लोगों को, परंतु झपका नहीं मारा, छलांग नहीं लगाई, देख रहा है पर वो अपने मजे से चल रहा है। तो हमने जो हमारे साथ था उनको कहा, पूछा उनसे कि जब देख रहा, हम लोग तो गाड़ी में थे शीशे बंद थे, तो ये क्यों नहीं झपका मारा? उसने कहा अभी इसका पेट भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है ना तो ये कभी नहीं करेगा, हाँ जब भूखा होता है ना तब करता है, भरे भरे हुए पेट में कभी नहीं किसी को मारेगा। तो देखिए जानवर में भी कम से कम इतना तो अकल है ना कि भूख है तब करेगा, पर इंसान को भूख है इसीलिए नहीं करता, परंतु बस बदला लेने की भावना, ये मानव जानवर से भी बदतर हो गया है। तो ये स्थिति का कारण क्या है? वो आंतरिक शक्तियां लुप्त हो गई हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं जिसके अभाव में ये घर घर नरक बन गया है? और फिर से अगर ये शक्तियां आ जाए तो घर घर स्वर्ग बन जाए। कई लोग समझते हैं कि कोई बाह्य शक्तियों की आवश्यकता है, धन की शक्ति होगी, बाहुबल होगा, हथियारों का बल होगा, दिमाग का बल होगा, मशीनों का बल होगा, तो फिर से संसार स्वर्ग बन जाएगा। लेकिन ये शक्तियां चाहे कितनी भी हो, ये बाह्य शक्तियां कभी न कभी धोखा दे सकती है। धन है, आज हम समझते मैं बहुत धनवान हूं तो बलशाली हूं, धन का अभिमान होता है, लेकिन वो धन जाने में कितनी देर लगती है। मुझे याद है जब भुज में भूकंप हुआ था, रात को सवेरे चार बजे हुआ, इतनी ठंडी थी, जैसे ही भूकंप हुआ जबरदस्त लोग भागे, मकानों को छोड़कर बाहर आए अपनी जान बचाने के लिए, और उनके देखते ही देखते देखा कैसे बिल्डिंग सब दहती गई, करोड़पति लोग होंगे। तो सवेरे अखबार में क्या आया करोड़पति रोडपति बन गए, करोड़पति रोडपति बन गए, क्योंकि रास्ते पर आ गए और ठिठुरती ठंडी में कांप रहे और उनके करोड़ों का वो मलबे में ढह गए। भले जान बची, कहा जाता है जान बची लाखों पाए, जान कीमती है, लेकिन जो कुछ उनका धन था वो तो मिट्टी में मिल गया, उसमें वो मलबे में दब गया। वो उस समय करोड़ों ने क्या काम किया, किया कुछ काम? रोडपति बन गए, कांप रहे, कंबल भी ओढ़ने के लिए नहीं था। तो वो धन की शक्ति समय पर धोखा दे सकती है, बुद्धि की शक्ति यानी दिमाग की शक्ति, बुद्धि तो सद्बुद्धि है, वो ज्ञान के आधार पर आती है, लेकिन जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं IQ इंफॉर्मेशन क्वोशेंट, मानो कि उनके पास इतना संसार का ज्ञान है पर व्यवहार का ज्ञान नहीं है। तो दुनिया का ज्ञान कितना भी उसके पास हो पर समय पर वो ज्ञान नहीं चाहिए, व्यवहार कैसे करना है वो ज्ञान चाहिए। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो आज बहुत बढ़ गई है, इंटरनेट के माध्यम से कितना ज्ञान संसार में अब बढ़ गया है, जो पहले इंसान कुछ नहीं जानता था आज बहुत कुछ जानने लगा है, बच्चा बच्चा भी जानने लगा है। परंतु अगर समय पर व्यवहार कैसे करना है, एक दो से किस समय क्या करना है क्या नहीं करना है, जो बाद में पश्चाताप न करना पड़े, उसके लिए जो ज्ञान चाहिए वो अंतर से आता है, वो आध्यात्मिकता है। इसीलिए बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि IQ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो सूचना संसार की बातें, जितना EQ जरूरी है। EQ माना इमोशनल क्वोशेंट, हम अपनी भावनाओं को अपनी वृत्ति को अपने वश में रख सकें, किस समय क्या कहना है क्या नहीं कहना है वो हमारे वश में हो, हम मालिक बने अपने इंद्रियों के। ये न हो कि कह दिया कर दिया फिर सोचते रहे पश्चाताप करें कि हाय मैंने ये क्यों किया, ये क्यों कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। इसलिए IQ से ज्यादा है EQ, इमोशनल क्वोशेंट, जो हम अपने इमोशंस को अपनी भावनाओं को अपने अंदर में रख सके। कई लोग हैं ना कि कुछ बोल देते हैं बस बिना सोचे, फिर दूसरे को बुरा लगता है तो वो कहेगा आपने ऐसे क्यों कहा, वो कहेगा भाई भूल हो गई, माफ करना, मेरा भाव ये नहीं था, मेरे अंदर कोई दुर्भावना नहीं थी, पता नहीं बोल कैसे निकल गए मुख से। अब भावना नहीं थी और बोल निकल गए, पर बोल तो निकल गए ना, इस जीव से निकले हुए शब्द जो एक बार कह दिए वापस तो नहीं आएंगे। ये जो होंठ है वो कमान की तरह है, जैसे तीर कमान होता है ना कमान, तो ये होंठ कमान की तरह है और जो शब्द निकलते वो तीर की तरह है, और एक बार तीर निकला कमान से वापस आ सकता है, आ सकता है वापस? भाई हम कहें तीर जाके वापस आ जाओ, तो कह दिया तो कह दिया, घाव कर दिया उसके दिल को। तो हम देखते हैं कि बाद में पश्चाताप होता है, क्योंकि उस समय हम अपने भावनाओं को अपने इमोशंस को अपने आप को वश नहीं कर सके, कंट्रोल नहीं कर सके, गुस्सा 10 मिनट करेंगे और सारा दिन उसका पश्चाताप करेंगे। कई बार हम ऐसे भी देखते हैं कि अपना ही वकील बन जाते हैं, अपने आप को ही अपना केस खुद ही करते हैं, हाँ मैंने गुस्सा किया पर किस लिए किया, इसके कारण किया, इसने ऐसे किया ना इसलिए गुस्सा किया, अगर ये नहीं करता था तो ये नहीं मैं करता था, तो दोषी दूसरे को ही बनाएंगे खुद को नहीं। इसीलिए आपको बताया होगा ना, एक उंगली किसी को धरते हैं तुम ऐसे हो, तो इनडायरेक्टली 3 उंगली अपने प्रति है ना, मैं 3 गुना दोषी हूँ, वो 1 गुना होगा पर मैं 3 गुना हूँ। तो पहले किसको बदलना है, वो बदले तो मैं बदलूं, अब वो तो बदलेगा जब बदले, पर मुझे बदलने के लिए पहला मौका है। तो इसीलिए मैं कैसे बदलूं, उसके लिए आंतरिक शक्ति चाहिए, चाहते भी हैं। वो कौन सी शक्तियां हैं? ये बाह्य शक्तियां काम नहीं करेगी। कई बार हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति ने ऐलान किया कि मैं पानी पर चल सकता हूं, मैं अग्नि से गुजर सकता हूं, कुछ नहीं होगा। चलो कोई कर भी ले, पानी से पर चले, अग्नि से गुजरे, कुछ भी उसको नल उसका असर हो, पर उसे समाज का कल्याण क्या होगा? ये तो केवल अपना ही नाम है, शो करना है। वो कोई शक्ति समाज का कल्याण नहीं करेगी। समाज का कल्याण किस शक्ति से होते हैं उसको आज हम समझेंगे, जो राजयोग के माध्यम से वो शक्तियां आती है। जब परमात्मा से हम योग लगाते हैं, उस सर्वशक्तिमान से संबंध जोड़ते हैं, तब हमें वो शक्तियां प्राप्त होती है। दुनिया में कई लोग इन शक्तियों को शक्ति समझते ही नहीं है, केवल भौतिक शक्तियों को ही शक्ति समझते हैं। मैन पावर, मनी पावर, मसल पावर, वेपन पावर है ना, जिसके पास हथियार बहुत हैं, समझेंगे मैं बहुत शक्तिशाली हूं। परंतु ये सब जो समय पर धोखा देते हैं, क्योंकि आंतरिक शक्तियां नहीं है। तो वो कौन सी है? शिव बाबा ने हमें कैसे इस राजयोग से अनुभव कराई है, और सचमुच उन शक्तियों को जब हम जीवन में अनुभव करते हैं, ये जीवन भगवान का एक वरदान बन जाता है, और उसके अभाव में जीवन आज अभिशाप बन गया है। तो हम क्या चाहते हैं, जीवन अभिशाप बने या जीवन वरदान बने? क्या चाहते हैं? वरदान ना? तो अभिशाप बनने का कारण है इन शक्तियों का अभाव। तो सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। सहन करने को शीलता कहते हैं, सहनशीलता, सहन शक्ति। सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन दुनिया में लोग इसे शक्ति नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं? समझते हैं सहन करना कायरता है। वो कहते क्यों सहन करें, मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या बुरा किया, और हम ही सहन करते जाएं तो लोग समझेंगे कि सचमुच इसकी भूल होगी, क्योंकि कुछ जवाब नहीं दे रहा है, सहन कर रहा है। तो वो एक दो सुनाए तो मैं चार सुनाऊं, फिर मैं चार सुनाऊं तो वो आठ सुनाए, फिर मैं वो आठ सुनाए तो मैं 16 सुनाऊं, फिर वो 32 सुनाए मैं 64 सुनाऊं, है ना, वो बढ़ता जाता है उसी प्रकार। और परिणाम क्या होता है, उसका अंत कैसे होता है? एक दूसरे को मार डालेगा, हत्या कर देगा, ये क्रोध का परिणाम हत्या। एक छोटा सा उदाहरण हम देते हैं, जो मेरे जीवन में, मेरे प्रैक्टिकल जीवन में मैंने अनुभव किया। मेरी बचपन की सहेली थी, स्कूल में पढ़ते थे, पड़ोसी थे, बहुत उसके पिता को अभिमान था, बड़ा दुकान था, बहुत कुछ। तो उस समय की बात है 1956, छोटे थे हम, और नए पैसे और पुराने पैसे साथ साथ चलते थे। पहले तो पुराने थे ना, 4 पैसा एक आने में, 16 आना 1 रुपए में। तो उसके बाद सरकार ने नए पैसे इंट्रोड्यूस किए, तो दोनों साथ साथ चलते थे, 2 आने में 12 पैसे और 4 आने में 25 पैसे। तो चाहे 2 आना दो या 12 पैसा दो, 25 पैसा दो या 4 आना दो, और इंटरचेंज भी हो सकता था। 2 आने की अगर चीज खरीदी और किसने 25 पैसा दिया तो उसको 12 पैसा लौटाते थे, भाई 2 आना लिया और 2 आना वापस, है ना। पहले ये कुछ समय तक चला, फिर तो वो पैसे आने सब खत्म हो गए। फिर 100 पैसे 1 रुपए में, 25 पैसे 50 पैसे ऐसे हो गया। तो बात ये थी कि एक व्यक्ति उस दुकान में आया और उसने चार आना दिया जब 25 पैसा और दो आने की चीज ली, तो क्या हुआ कि 12 पैसा वापस किया। अब पर वो ग्राहक लड़ने लग गया, नहीं 25 पैसा दिया है, 12 पैसे की चीज है, 13 पैसा वापस करो। तब तो एक पैसे का भी मूल्य था, अभी तो वो बात नहीं रही है। 13 पैसा वापस करो। उसने कहा नहीं, दो आना की चीज, दो आना वापस। अब एक पैसे पर झगड़ा हो गया, एक पैसे पर, और परिणाम स्वरूप उस दुकानदार ने उस ग्राहक को छुरा लेकर मार डाला गुस्से में। अब मार तो डाला और सवेरे अखबार में आ गया 1 पैसा मर्डर, एक पैसा मर्डर। तो जैसे हमने अखबार पढ़ी तो मालूम पड़ा ये क्या है, और फिर पता चला अरे ये तो पड़ोस वाले बिल्डिंग में ही वो दुकान उसका मालिक और मेरे फ्रेंड का पिता। तो एकदम से हम गए देखने, तो उसको तो उसी वक्त, क्योंकि सबके सामने हुआ ना, ऐसे थोड़े कि छिपकर किया, सबके सामने हुआ, तुरंत पुलिस आई, उसको पकड़ के ले गई जेल में। अब वो उसके बाद चलो लोगों ने तो एक दिन अखबार पढ़ी, फिर तो भूल गए जिनका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन हमको क्यों पता चलता गया, क्योंकि वो तो मेरी सहेली थी, उसका पिता था। तो हमने देखा उसके बाद वो दुकान चली गई, उसका मकान गिरवी रखना पड़ा, वो जेल में पड़ा रहा, क्योंकि जब तक फैसला हो जब तक होता रहे होता रहे, और अंत में इतना शराब पीता था और शराब की स्थिति में जेल में मर गया। मानो भले 20 साल तक काटा, तो फिर तो हम भी नहीं मिले, पर कई सालों के बाद वो बहन हमको मिली। तो इतनी मानो उसकी परिस्थिति ऐसी बुरी थी कि बात नहीं पूछो। और मैंने पूछा कि उसका क्या हुआ, कहा बस बहन जी बात नहीं पूछो, सारा घर बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो हम देखते हैं कि बात क्या थी, एक पैसे की। चलो कह रहा है एक पैसा दे दो ना, क्या जाता है, पर क्यों, मैं क्यों ये करूं, मैं ऐसा। तो दुनिया में हम देख रहे हैं कि क्या शक्ति का भाव है, सहन करने की शक्ति का भाव है। सहन नहीं कर, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, अच्छा आपको ऐसे कहा तो लग गया क्या, कहां लगा, चलो मुख से ही कहा ना, कहेंगे दिल में गया ना। अब दिल में कैसे गया, आपने ऐसे ही तो नहीं चला गया, कहेंगे मैंने अपने कानों से सुना। अच्छा कान बंद कर देते थे, अब देखो तूफान आता है, आंधी आती है, बारिश पड़ती है, इतना गजगोर होता है, अब हमारे घर में सब गंदगी हो जाएगी, मिट्टी धूल आएगी, तो हम उसको रोक सकते हैं क्या, आंधी तूफान को रोक सकते हैं क्या, रोक सकते हैं। उनको कहे तुम क्यों आए, वो कहेगा प्रकृति है। परंतु हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, क्या कर सकते हैं, अपनी खिड़की दरवाजे बंद रखो बस, और क्या करेंगे। खिड़की दरवाजे बंद करें ताकि मिट्टी धूल घर में ना आए, बाकी बाहर तो है ही है, बारिश का मौसम है, बारिश तो आएगी, हम बरसात को कोसते रहेंगे, बरसात अभी मुझे बाहर जाना था तुम क्यों आई, अब बारिश आई तो आएगी, हम छाता ले लेना। हम अपना जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो तरीका है अपनी रक्षा करने का, वो हम करें। पर हम बारिश को आंधी तूफान को तो कोसेंगे नहीं, उसको तो रोक नहीं सकते, वो प्रकृति की शक्ति है। परंतु हाँ मनुष्य के लिए हम क्या, इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, अच्छा कहा, मालिक है वो आज दुनिया, भारत में फ्रीडम ऑफ प्रेस है, फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई किसी को भी रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री को भी देखो कैसे गालियां देते हैं लोग, पार्लियामेंट में देखो बात नहीं पूछो, अब वो बेचारा क्या करता है, इतनी बड़ी अथॉरिटी तो भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप इंग्लैंड में जाएंगे वहां ऐसे नहीं कोई कह सकता है किसी को, लेकिन वहां एक जगह बनी हुई है, लंदन में एक जगह बनी है, हाइड पार्क कहते हैं। उस पार्क में जिसको जिसके विरुद्ध कुछ भी कहना है, भाषण करना है या नारे लगाने हैं, कुछ भी कहना है, वो उसी स्थान में जाके जो चाहे सो करे, अलाउड है, छुट्टी है, पर बाहर नहीं करे। जापान में हमने देखा कई कंपनीज में, समझो जो काम करने वाले होते हैं ना, वर्कर्स होते हैं, तो अपने बॉस से उनको बहुत नाराजगी है, बहुत गुस्सा है अपने बॉस पर, लेकिन सामने तो जवाब नहीं दे सकते ना, बॉस के सामने कैसे सामने जवाब दें। तो वहां एक कमरा बना हुआ है, कई कमरे बने हुए, वो उनके बॉस का स्टैचू बना हुआ है रबर का। तुमको गुस्सा आता है ना अपने बॉस पर, वो रबर को मारो जितने मुक्के मारने हो उसको मारो, उसको मारो, पर बॉस के सामने जवाब नहीं दो तो गुस्सा आता है तो कहां निकाले, तो उसके आगे करो भले। आजकल टेंशन के लिए ना किसी को बहुत तनाव हो जाता है तो उसके कई खिलौने मिलते हैं, बॉल होता है वो नरम होता है, तो गुस्सा आता है तो ऐसे हाथ ही कांपने लगते हैं, तो उस समय वो पकड़ो उसको, उसको बोलते हैं स्ट्रेस टॉयज, स्ट्रेस के लिए, टेंशन के लिए वो खिलौने, उसको जोर से पकड़ते हैं, गुस्सा आता है बस उसको, क्या करें, तो किसको मुक्का मार देगा तो इसीलिए सहन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये कायरता नहीं है। हम दूसरे को नहीं रोक सकते हैं पर खुद को बदल सकते हैं। आज जितने भी महान व्यक्ति इस संसार में होके गए हैं, महात्मा गांधी का ही आप उदाहरण ले लो, वो महात्मा कैसे बना, कितना सहन किया। आज महात्मा गांधी की सहन शक्ति के कारण ही देखो दुनिया उसको मानती है। भारत में भले हम इतना न भी माने, घर की मुर्गी कहते हैं दाल बराबर, घर की गंगा का कदर नहीं है, लेकिन दुनिया में महात्मा गांधी का बड़ा मान है। आप यूनाइटेड नेशंस ने 2 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जन्मदिन को नॉन वायलेंस डे घोषित किया, अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया, महात्मा गांधी का मान बढ़ाने के लिए। आज हिटलर को कौन याद करेगा, कौन याद करेगा, हिटलर जर्मनी में जिसने 2nd World War शुरू किया, हिटलर ने, आज उसका नाम भी लोग नहीं सुनना चाहते हैं, नाम तक नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसा उसने काम किए जो इतने लाखों लोग मारे गए 2nd World War में। आखिर उसको सरेंडर ही करना पड़ा, हार ही गया और जाकर के अंत में अपना सुसाइड कर लिया। नेपोलियन जैसा राजा, सेल्फ इम्पोज किंग यूरोप की हिस्ट्री में आता है, अपने आप को ही राजा बना दिया किसी ने नहीं, तो राजा जब बनता है ना तो कोई उसको सिर पर मुकुट पहनाते हैं, ताज पहनाते, खुद नहीं पहनता है ताज, उनको कोई और पहनाते हैं, जो नीचे उतरेगा वो दूसरे को ताज पहनाएगा, लेकिन उसने अपने आप को राजा बना दिया, सेल्फ इम्पोज किंग, खुद भी अपने सिर पर मुकुट रख दिया ताज रख दिया, और बहुत उसने युद्ध किए और अंत में एक छोटे से टापू पर अपना अपने आप को अंत कर दिया, क्योंकि एकदम खाली हो गया। तो अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, वैर, दुश्मनी, ये सारे इंसान को नष्ट करते हैं। पर ऐसा अगर व्यक्ति मेरे सामने आए, मैं कैसा व्यवहार करूं? मेरे पास कई माताएं आती है, कल भी कितनी माताएं आई, बहन जी मेरे पति को आप सुधारो, बहन जी मेरे पति को आप समझाओ, बहुत गुस्सा है बहन जी, बहुत गुस्सा करता है, अब हम क्या करें? हम कहते हैं सहन करो। माताओं के अंदर सहन करने की शक्ति बहुत होती है, लेकिन सहन करने के लिए क्या सोचे? ये नहीं मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, मुझे सहन करना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं कि चलो कानों से सुना, चलो सामने जवाब नहीं दिया पर आंखों से निकाल दिया। माताएं बिचे कितना रोती है हमने देखा है, सहन करती रहती है, रोती रहती है, सामने जवाब तो दे नहीं सकती है, तो या तो आंखों से निकल आएगा पुरुष पुरुष सहन नहीं कर सकते, चलो मुख सामने नहीं बोल, मानो आंखों से वो रोते नहीं है तो मुख से बोल देते हैं, माताएं आंखों से निकालती है, सामने नहीं कहेगी चलो बाथरूम में जाके या तकिए के नीचे रोती रहती है, रोती रहेगी, तकिया गीला कर देगी, या गंगा जमुना तो बहती रहती है। तो बाबा शिव परमात्मा ने हमें कहा है बच्चे ये भी सहन करना नहीं कहा जाता, आंखों से भी निकले माना अंदर में उसको समाते गए ना, लेकिन उस समय हमारी स्थिति कैसी हो, सुन रहे हैं देख रहे हैं, जैसे आप पिक्चर देखते हो अभी रावण आ गया एकदम, रावण चिल्ला रहा है हा 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 हंस रहा है जोर से सब कर रहा है, आप पिक्चर देख रहे हो तो कैसे देखते हो, कैसे देखते हो उसको, साक्षी दृष्टा होके देखते हो ना, कि आपको भी गुस्सा आता है कि राम क्योंकि रावण गुस्सा कर रहा है, नहीं क्यों, क्योंकि वो तो स्क्रीन पर आ रहा है, हमारे जीवन में तो ये नहीं है, पर ये तो प्रैक्टिकल जीवन में है, तो हम कैसे सहन करें उसको। तो शिव बाबा ने उसकी बहुत अच्छी युक्तियां बताई, जब कोई सामने ऐसे कोई व्यक्ति बोलता है आपको अच्छा नहीं लगता है तो अंदर में पहला पहला संकल्प ये करो, जैसे होम्योपैथी दवाई मिलती है ना, भाई ये दवाई ठीक है या नहीं, तो डॉक्टर पहले कम पोटेंसी की दवाई देगा, 3x या जो कुछ भी ये 6x या उस प्रकार से, परंतु फिर जैसे जैसे वो दवाई ठीक होती है तो उसकी पोटेंसी बढ़ाता है। तो इसी प्रकार पहला पहला संकल्प मन में क्या आना चाहिएगा, भाई जो करेगा वो भरेगा, सच्ची बात है जो करेगा वो भरेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, हर एक को अपने कर्म का फल मिलना है, मैं अपना कर्म क्यों बिगाड़ूं, मैं अपने कर्मों के खाते में क्यों मैं रेड मार्क डालूं फेलियर का, हर एक अपना कर्म का मालिक है, इसलिए जो करेगा वो भरेगा। अंदर में ये हम सोचते हैं, यानी किसके लिए, बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम उस समय साक्षी दृष्टा होने के लिए अंतर में यही सोचते हैं, उसको बोलो नहीं तुम करोगे तो तुम भी भरोगे, ऐसे बोलना नहीं है, पर अपने आप को संतोष देने के लिए ये कहें अपने आप को, उसके प्रति तो शुभ भावना है ही कि ये व्यक्ति सुधर जाएगा, पर नहीं सुधरता है, चलो जो करेगा सो भरेगा, हम क्या कर सकते हैं, चलो पर मान लो ये बोलता ही जा रहा बोलता ही जा रहा, आप कहां तक सहन करेंगे, उस समय अपने अंदर ये सोचो ये संसार एक बेहद ड्रामा है, इस बेहद ड्रामा में हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, आप पिक्चर देखने जाते हो कोई कॉमेडियन है कोई ट्रेजेडी वाला है, कोई हंसाता है कोई रुलाता है, कोई हीरो है कोई विलियन है, हम बस साक्षी होकर के देखते हैं क्यों क्या नहीं करते, ड्रामा, तो ये संसार भी एक ड्रामा है, हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक के अंगूठे की छाप न मिले दूसरे से, डीएनए रिपोर्ट लेते हैं एक एक का बाल दूसरे के बाल से अलग है, पता चल जाता है किसका बाल है, बाल केवल और बातें तो छोड़ो, हर एक का अपना अपना वो शरीर का है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हर एक का, एक की शक्ल न मिले दूसरे से, दो जुड़वे भाइयों की भी शक्ल नहीं मिलती है, कुछ तो 19-20 का फर्क होगा तभी तो माँ पहचान लेती है ना, भले दूसरे न पहचाने माँ तो पहचान लेती है, बाप भी कई बार मुंह जाता है पर माँ तो पहचान लेती क्योंकि उनके साथ में रहते हैं, इसीलिए कोई भी एक दूसरे से के समान है ही नहीं। तो जब हम ये अंदर में सोचते हैं, हम कभी न सोचें कि मैं जैसे सोचता हूं वैसे ये सोचे, मैं जैसे करती हूं वैसे ये करे, मैं जैसे कहती हूं वैसे ये करे, नहीं नहीं करेगा, क्योंकि उसका सोचने का ढंग अपना है, कहने का ढंग अपना है, करने का ढंग अपना है। कई बार हम कम्युनिकेशन स्किल्स बताते हैं, आपने किसी को कहा कि ये बात फलाने को कहना, लेकिन क्या उसी रूप में वो कहता है, थोड़ा जोड़कर थोड़ा काटकर दूसरे को कहेगा, फिर वो दूसरा तीसरे को कहेगा, तीसरा चौथे को कहेगा, चौथा पांचवें को कहेगा, और आपने जो कहा और पांचवें छठे तक जो व्यक्ति को वो आपकी जो बात पहुंची बिल्कुल उलट होकर के पहुंची, बिल्कुल उलट होकर के, क्योंकि इतने लोगों के बीच से गुजरा ना, हर एक ने अपना अपना ऐड किया, कम किया, उसका उस बात को बदल ही दिया, जिसको हम कई बार भाषा में कहते हैं बात का बतंगर बना दिया, बात का बर्था, वो जैसे वो होता है ना बैंगन, उसका बर्था बना दिया, उसको इतना बदल, एकदम बदल दिया, कहाँ बैंगन कहाँ उसका बर्था, भले उसकी टेस्ट आएगी परंतु बिल्कुल ही बदल गया। तो ये समझो संसार का ये हाल है, ये समझ लो, ये होना है, इसीलिए हम उसमें दुखी नहीं हो जाएं, पर कहते फिर क्या करें आखिर उसका, क्या हम कहां तक चलें, हम सुनते ही रहें सुनते ही रहें। तो उस समय ये सोचना होता है कि ये व्यक्ति मेरे कल्याण के लिए कह रहा है या मेरे से ईर्ष्या है इसीलिए कह रहा है, कि गुस्सा क्यों करता है वो आपको बदलने के लिए कहता है, आप मैंने गुस्सा किस बात से करता होगा, जो बात उसको अच्छी नहीं लगती आप कर रहे हैं तो उसको गुस्सा आता है, नहीं तो क्यों करेगा। अच्छा ठीक है हम बदल जाएं, वो नहीं बदलेगा हम बदल जाएं, ताकि हम उसको गुस्सा दिलाएं ही नहीं, और बार बार हम भी बदलते नहीं वो भी बदलता नहीं तो वो भी गुस्सा करेगा, हम कहां तक सहन कर सके। परंतु मान लो ईर्ष्या के वश कह रहा है तो फिर उस पर दया करो, दया करो, वो आत्मा बहुत कमजोर है, क्रोध शक्ति नहीं है, क्रोध कमजोरी है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, समझो कमजोर है, उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर समझता है कि इसको बहुत कमजोर है, इसको इंजेक्शन देना पड़ेगा, तो डॉक्टर के अंदर तो कल्याण की भावना है, और बच्चे को इंजेक्शन जैसे ही देता है वो बच्चे को गुस्सा आता है, लात मार देता है ना, डॉक्टर को ही लात मारता है। अब डॉक्टर क्या करेगा, वो जानता है बेचारा कमजोर है, तो उस पर दया करता है या गुस्सा आता है डॉक्टर को, क्या आता है हा? दया करता है, बेचारा नहीं नहीं ठीक हो जाओगे बेटा, कोई बात नहीं ठीक हो जाओगे। अब मालूम है ये कमजोर है, तो हमारे विचारों में परिवर्तन आ गया तो हमें भी, हमको गुस्सा नहीं आएगा लेकिन हमको दया आएगी, बेचारा हाँ बेचारा, क्योंकि ये अंतर में कमजोर है, अगर ये शक्तिशाली होता सचमुच गुस्सा नहीं करता, पर कर रहा है, माना ये शक्तिशाली नहीं है ये कमजोर है, क्योंकि क्रोध विकार है, विकृति है, इससे बहुत बड़ा पाप बनता है। तो दया आती है, और दया माना उसके प्रति शुभ भावना रखते हैं कि ये व्यक्ति अवश्य बदल जाएगा, और फिर वो जिम्मेदारी ईश्वर को दे दो, शिव बाबा आप ही इनको संभालो। मुझे याद है एक माता आई थी हमारे पास, वो अपने बेटे को इतना कोसती थी, बात नहीं पूछो इतना कोसती थी, क्योंकि माना संग का रंग लग गया, तो जब भी बेटा सामने आए ना या उनकी गैरहाजिर, मर जाए मर जाए मर जाए, बस यही कहें मर जाए, बहुत दुखी रहती थी। तो किसने उसको कहा कि जाकर माउंट आबू में जाकर राजयोग शिविर करो, बेचारी आई वो, तो हमें कहे बेटा साथ में नहीं था पर खुद अकेली आई, कहती मैं क्या करूं मेरे अंदर इतना गुस्सा आता है, कहती मर जा मर जा। तो मैंने कहा अच्छा तुम ये मुख से कहती हो मर जा, तुम चाहती हो कि वो मर जाए, कहा नहीं 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 अब चाहती नहीं हो कि वो मर जाए तो मुख से क्यों कहती हो, कहती क्या करूं बहुत गुस्सा आता है ना इसीलिए निकल आता मर जाए। तो मैंने कहा अगर आप चाहती नहीं हो तो मुख से भी नहीं कहो, अच्छा आपका उसमें मोह है, कहती मोह तो बहुत है, अब मोह भी है और मुख से कहती हो मर जा, दोनों बातों का मेल तो नहीं है, या तो मर जाए या तो मोह है, मोह है तो मरना चाहती हो वो मरे, तो मरना भी नहीं माना चाहती कि वो मरे, और मोह भी बहुत है फिर मुख से क्यों कहती हो। तो कहती क्या करूं फिर, तो हमने कहा देखो
पहले पहले आप उसके अंदर जो आपके अंदर उसके प्रति मोह है ना, वो निकालो। कहते कैसे निकालूं? तो मोह क्यों आता है? क्योंकि मेरा, दूसरे का कुछ हुआ तो हमको दुख नहीं होगा, पर मेरा चीज को कुछ हुआ कितना दुख होता। हाँ, मेरा होता है ना। अब हम सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, एक एक्सीडेंट हुआ, ये मरा, फलाना ही मरे। कहते ठीक है, हमारा थोड़ी है उसमें कोई, परंतु मालूम पड़ा मेरा उसमें कोई है तो एकदम से जाएगा ध्यान, जाएगा मेरा है। तो जहां मेरापन है वहां मोह होता है, वहां ध्यान जाता है, रग जाती है। तो पहली बात, ये क्यों सोचती हो कि ये मेरा बच्चा है? ये सोचो ये भगवान का बच्चा है। देखो ये युक्ति है, ये अपने अंदर परिवर्तन करो, ये भगवान का है, ये मेरा नहीं है। क्योंकि उसने कहा मैंने बहुत अंदर में मान्यता मानी, इतनी मैंने तपस्या की, इतना मैंने वो व्रत रखे कि बेटा हो। अब बेटा हुआ और फिर कहे मर जा, बताओ। तो इतना सब कुछ किया तो उस अभी क्या कहो? क्योंकि भगवान ने बेटा दिया, तो जब भगवान ने दिया तो बेटा किसका है? भगवान का है। आप क्यों समझती हो मेरा है? आप भगवान को कहो, हे भगवान ये बेटा तेरा है, तुम संभालो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमने ही दिया है, लेकिन मैं नहीं संभाल सकती हूँ इसको, आप संभालो। और जब भी कुछ ऐसा करे ना, आप अंदर में ये सोचो, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, आप इनको सुमति दो, आप इनको संभालो। और उसके अंदर जो उस माता में जो गुस्सा था वो धीरे धीरे ठंडा होता गया, कम होता गया, होता गया, होता गया। और आश्चर्य हुआ कि वो बच्चा भी बदल गया। अब ये गुस्सा करे वो भी करे तो गुस्सा करने से होगा क्या? पर जब ये बदल गई, अपने आप को दृष्टि में वृत्ति में परिवर्तन कर दिया, जब भी कुछ हो बाबा ये बच्चा आपका है, ये बच्चा आपका है। और सचमुच वो बच्चा बदल गया, क्योंकि भगवान को जिम्मेदारी दे दी, अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ली। ये नहीं कि ये बच्चा ऐसा है इसलिए मर जा, नहीं, जिम्मेदारी भगवान को दी। और सचमुच उसकी बुद्धि बदलती गई, बदलती गई, बदलती गई। फिर मुझे 3 मास के बाद पत्र लिखा उसने कि बहन जी आपने जो हमें युक्ति बताई ना वो बहुत काम आ गई, अभी मेरा बच्चा बहुत बदल गया। तो मैंने कहा अभी फिर कहा मेरा बच्चा है, किसका है? भगवान का है, मेरा नहीं। फिर उसके बाद उस बच्चे को लेकर के आई और हमें मिलाया, वो बच्चा भी इतना खुश हुआ का भी अभी तो हमारा घर स्वर्ग हो गया। वो कहे मेरी मम्मी ऐसी थी, वो कहे मेरा बेटा ऐसा था, आखिर कौन? दोनों में कोई ना कोई तो कमी होगी ना, कुछ ना कुछ। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, 2 हाथ से ताली बजती है। तो इसीलिए आवाज तब होता है जब दोनों की कोई ना कोई बात होगी। इसलिए मैं, मेरे अंदर क्या कमी है वो मैं पहले बदलूं तो अपने आप वो बदल जाएगा। इसको हम कहते हैं सहन शक्ति। और मेरे अंदर जो गुण है वो मैं दूसरे को दूं। इसीलिए पेड़ का, आम के पेड़ का मिसाल दिया जाता है। जैसे आम के पेड़ में आम लदे हुए हैं तो जितने आम ज्यादा होंगे उतना वो पेड़ झुकता है, परंतु झुकने का मतलब ये नहीं है कि वो हार खा लेता है। झुकना माना जो राहगीर है उनको छाया देता है, अपना फल किसको देता है। एक लड़का उसको पत्थर मारेगा आम को तोड़ने के लिए, लेकिन वो पेड़ उसको पत्थर लगा परंतु उसकी जगह उसको आम दिया। क्यों आम दिया? कहां? क्योंकि उसके पास आम था, बच्चे के पास तो पत्थर ही है, आम कहाँ से आएगा, उसको तो आम चाहिए। तो पत्थर लगा तो भी दिया क्या? आम। तो हम क्या करते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से, किसने 2 गाली दी तो 4 ठोको ऐसे हा? नहीं। इसलिए मुझे सहन करना है। अब कई बार क्या होता है, चलो सहन कर लेते हैं, अपने पति के आगे, सास के आगे कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन क्या करते हैं पता, अंदर में तो रख नहीं सकते, नहीं तो वो कैसे रखेंगे, वो दूध का उबाला बाहर आ जाता है। तो सामने जवाब नहीं दिया, चलो रोया भी नहीं, सहन करते गए, पर जाके पड़ोसी को सुनाया, मेरा पति है ना बहुत तंग करता है ना, मेरी सास है ना बहुत दुखी कर दिया मेरी सास ने, अब पड़ोसी को तो चाहिए मिर्च मसाला। वो कही अच्छा तेरी तेरी सास ऐसी है क्या? हाँ ऐसे ही है, ये कोई काम की नहीं। मतलब अब वो तो उसको क्या है, वो तो आपकी बात आपके साथ, फिर सास को जाके कहेगी तुम्हारी बहू ने तुम्हारे लिए ऐसे कहा। फिर इतना ही नहीं, जो आपने शब्द के उसमें थोड़ा दो चार बातें और भी ऐड कर देगी और मिर्च मसाला डालेगी। गुजरातियों में तो अच्छा है ना, खटाई भी तो मीठा, मीठा भी तो, खट्टा भी तो, तीखा भी, सब एक दाल में सब कुछ डाल देते हैं, हर एक अपना अपना टेस्ट को बढ़ाने के लिए। तो वो मिर्च मसाला डाल करके जाके सास को कहेगी तो झगड़ा बढ़ गया। तो कई कहते फिर हम करें क्या, क्या करें, उसका समाधान क्या है? पड़ोसी को नहीं कहे, भले कहो जरूर पर किसको कहो, सबको नहीं कहो। देखो जैसे किसी को उल्टी आती है तो उल्टी सब जगह करते हैं क्या? थोड़ा तो सहन करना पड़ता है ना, थोड़ा तो अंदर में समाना पड़ता। उल्टी आती है तो भाई जहां बेसिन है, जहां पर जगह है, जहां पानी मिल सकेगा, भाई उल्टी अंदर नहीं जाएगी बाहर ही आएगी। तो भले करो पर स्थान, व्यक्ति, समय, माना उसको देख करके करना होता, तब तक तो सहन करना होता है नहीं कि जहां आया कर दिया उल्टी। तो दूसरी शक्ति है समाने की शक्ति, उसको समा दो। भाई दो कान किस लिए मिले हैं? एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, बेकार की चीज है तो दूसरा कान किस लिए? निकालने के लिए। काम की चीज है तो अंदर ग्रहण कर लो। देखो जैसे सागर होता है, सागर की कितनी विशालता है, कितना बेहद है वो सागर, लेकिन सागर का स्तर कितना साफ होता है, स्वच्छ होता है। हम हवाई जहाज से सागर को देखते हैं कितना स्वच्छ साफ होता है। तो इतना किचरा पड़ा तो भी सागर कभी भी गंदा नहीं होता है। क्यों क्यों नहीं गंदा होता है? क्योंकि सागर में दो विशेषताएं हैं। एक है कि अगर कोई हल्की चीज सागर में डालते हैं ना, वो सागर लहरों के आधार से किनारे पर फेंक देता है, इसलिए सागर का किनारा बहुत गंदा होता है, कई गंदी वाला चीजें उस पर होती है। तो हल्की चीज किनारे पर फेंक देगा और जो भारी चीज उसमें पड़ी वो अपने अंदर डाल देगा, अपने अंदर समा देगा। तो सागर में भी ये शक्ति है, हल्के को निकाल देना, भारी को अपने अंदर ले लेना। तो मनुष्य के अंदर वो शक्ति आनी चाहिए कि बेकार चीज दूसरे कान से निकाल दो और जो काम की चीज है वो अपने अंदर धारण कर लो और फिर बदल जाओ। किसी को सबको सुनाने से तो कुछ परिवर्तन तो होना नहीं है। तो सागर जैसा हृदय विशाल कैसे बनेगा? जब हमारा योग परमात्मा के साथ होगा। सहन शक्ति तब आएगी जब हमारा योग परमात्मा के साथ होगा कि सर्वशक्तिमान परमात्मा की मैं आत्मा संतान शक्ति स्वरूप हूं। विशाल हृदय बन जाएगा क्योंकि दृष्टि हमारी बेहद हो जाएगी, सब भगवान के बच्चे हैं, सब अपनी आत्मा में शुद्ध रूप में है, कोई भी इस संसार में बुरा नहीं है, लेकिन इस समय इसको पता नहीं है इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है। नहीं तो दुनिया में हर आत्मा बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अज्ञान के वश ये हो रहा है। ज्ञान होता तो ये नहीं करता, तो दया आए। और बेकार बात हम उसको ऐसे भूल जाएं जैसे कि वो हुआ ही नहीं, उससे सबक सीख लिया और अपने आप को परिवर्तन कर लिया। भगवान के आगे भी देखो दुनिया में क्या क्या बोलते हैं, भगवान को गालियां देते हैं लोग, हे भगवान तुम निर्दयी हो, हे भगवान तुम बहरे हो, हे भगवान तुम ऐसे हो, हमारी सुनते नहीं हो, ये नहीं करते, ये नहीं करते। अब भगवान क्या करता है? वो तो उसको सजा देता है क्या? जो भगवान को ऐसे गालियां देता है, सजा देता है भगवान? वो कहेगा बेचारा। तो हमारा भी इतना हृदय विशाल हो, बेहद की दृष्टि हो, हर आत्मा का पाठ देखते रहें और अंतर में ये सोचें कि ये आत्मा वास्तव में बुरी नहीं है, ये आत्मा भी अपने असली स्वरूप में तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा है, ये आत्मा भी परमात्मा की संतान है, लेकिन इस समय ये इनको समझ नहीं है, पर मुझे तो समझ है ना, तो मैं उसी अनुसार उस आत्मा के प्रति वही भावना रख करके हम अपने अंदर में न समाऊं। अब कई लोग कहते हैं बहन जी चलो ये तो समझ गए, लेकिन अगर वो बार बार करता रहे, बार बार करता रहे, उससे जीवन में नुकसान हो रहा है, तो फिर क्या करें? तो फिर दिखाया है तीसरी शक्ति, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। उसमें बड़ा निर्भय होना पड़ता है, क्योंकि अगर हम बहुत सहन करते, बहुत समाते, तो हो सकता है अंत में इसका नतीजा बुरा निकले। जैसे हम मिसाल देते हैं, कॉलेज में हम पढ़ते थे मेंढक, मेंढक होता है ना, तो मेंढक के अंदर जबरदस्त सहन शक्ति है, जबरदस्त समाने की शक्ति है। तो क्या होता है, उसको पानी में डालते हैं और ऊपर ढक्कन नहीं रखते हैं और नीचे से आग जलाते हैं, तो वो पानी गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है, और मेंढक के अंदर वो शक्ति है अपने अंदर से गर्मी पैदा करने की, सहन शक्ति है ना, तो अंदर से गर्मी पैदा करता है, गर्मी बढ़ाता है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो अपना टेम्परेचर भी वो बढ़ाता है ताकि उसमें संतुलन बना सके। अब इतनी शक्ति उसने अपनी गर्मी की बढ़ा दी और अचानक एकदम से पानी उबलने लगता है। अब जब उबलने लगता है तो वो कहता है, सोचता है कि अभी तो मैं सहन नहीं कर सकता हूं, फिर उसके बाद क्या करता है, वो कूदने की कोशिश करता है। अब कूद भी नहीं सकता क्योंकि सारी शक्ति उसने अपने अंदर में सहन करने में लगा दी, सहन करने में लगा दी, तो जिस समय नहीं आगे सहन कर सका तो कूद भी नहीं सकता है जो अपनी जान बचा सके, और उसी के बाद वो मर जाता है उसी में। तो अगर वो पहले से समझ जाता होता कि इसमें ज्यादा आग होगी, गर्मी बढ़ेगी, मैं पहले से कूद जाऊं तो बच जाता, लेकिन वो सहन करता रहा, समाता रहा, समाता रहा, आखिर वो मर गया। तो हम भी देखते हैं कई ऐसे घरों में बहुत ज्यादा बहू है, सहन करती रहती क्योंकि पति ने कहा, सास ने कहा दहेज लाओ, माँ बाप को कहो पैसा लाओ, हमको मोटरसाइकिल खरीदना, हमको गाड़ी खरीदनी, हमको ये करना, हमको वो करना। अब वो माँ बाप को भी नहीं कह सकती है, बेचारी कहे कैसे, माँ बाप भी इतने कोई धनवान तो नहीं है जो बेटी को देते ही रहेंगे, वो भी तो अपना भी उनको पेट पालना है। तो किसी को नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती, समाती रहती है, सहन करती थी, पुलिस में भी रिपोर्ट नहीं करती, कैसे कहें, पड़ोसी को भी कुछ नहीं कहती, तो अंदर ही अंदर सहन करती जाती, करती जाती है, किसी को नहीं बताती। आखिर अब वो कुछ भी नहीं करती है तो पति, सास, ससुर, देवर, जेठ, अब वो अथॉरिटी बन जाता है, कमजोर होती जाती है, और जैसे कमजोर होती जाती है तो कई बार हम देखते बहू दहन, बहू को जला डालते हैं। अब जब पुलिस केस बनता है, बहू घर में बहू जली, तो जब पुलिस केस बनता है तो पुलिस पहले ये देखती है कि कोई ऐसा है जो प्रमाण देवे कि इसको घर में सताया जा रहा था, तो न माँ बाप को बताया, न पड़ोसी को बताया, न पुलिस में रिपोर्ट किया, कहीं भी नहीं, तो पुलिस किसको पकड़े। मुझे याद है मैं एक बार बड़ौदा जेल में गई थी, बड़ौदा था या नड़ियाद था पता नहीं कहाँ, तो आनंद या नड़ियाद, तो वहां मैंने मुझे मैं जे हम लोग जेल में राखी बांधने के लिए गए थे या भाषण करने के लिए गए थे, तो हमने देखा है एक परिवार, माना सास ससुर देवर जेठ ये सब ननंद सारे के सारे जेल में। तो हमने पूछा कि क्या हुआ, तो कहा कि इनके घर में बहू दहन हुआ, माना इनकी बहू को जल गई, परंतु सबको पहले जेल में डालेंगे फिर केस चलता है, परंतु जब तक एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रमाण ही नहीं मिला, तो फिर वो छूट जाते हैं। तो इतना भी सहन नहीं करना, इतना भी नहीं समाना है जो हम आखिर अपना ही जान से हाथ धो बैठे। आजकल तो हमने देखा है कई कानून बन रहे हैं कि स्त्री को अधिकार है पुलिस में रिपोर्ट करने की अगर कोई बात है तो, और पति को कोई अधिकार नहीं है कि इतना उसको मारे, बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। यानी आप समझे कि ये हम भूल जाते हैं कि वो भी एक शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शांत स्वरूप आत्मा है, भगवान का बच्चा है, पर अधिकार, क्रोध, नफरत ये इतना हावी हो जाता है कि आगे पीछे हम कुछ भी नहीं सोचते। तो इसीलिए चाहिए वो परख शक्ति कि इसका आगे परिणाम क्या निकलेगा। जैसे हीरा पारखी होता है ना, हीरा पारखी वो हीरे को परखता है, वो उसका अंदर में दाग होते हैं वो, क्योंकि पहाड़ों से आता है हीरा भी, तो उसको तराशते हैं, काटते हैं और काट काट करके उसको शेप देते हैं, उसका अंदर का दाग निकालते हैं जो दाग है, और उसको इतना सुंदर हीरा बनाते हैं। तो हीरे पारखी होते, तराशने वाले होते हैं, हमने देखा गुजरात में, सूरत में, पालनपुर में कितने हैं। तो परखने की शक्ति बहुत शक्तिशाली चाहिए। तो परखना हम किसको कहते हैं, जैसे जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी चीज को बड़ा बना सकता है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास राजयोग बन सकता है। भविष्य का सोचते हैं कि इसका परिणाम आखिर कहाँ तक जाएगा, हम अपनी शक्ति को कमजोर न करें और उसका हम कुछ न कुछ निर्णय जरूर लें। तो भविष्य सोचकर उस परिस्थिति को परख कर फिर निर्णय लेना पड़ता है। अब इसमें निर्णय लेने के लिए कई बातें हैं, किसको महत्व दें। मान लीजिए कोई चोर हमारे घर में आता है, अब वो चोर आता है और हमें कहता है कि बंदूक दिखाता है, कहता है सब निकालो जेवर नहीं तो मार डालूंगा। अब आप क्या करेंगे, लड़ेंगे उनसे कि दे देंगे जेवर, क्या करेंगे, नहीं तो मार डालेगा, क्या करेंगे माताएं, हाँ दे देंगे। सच्ची बात है, जान बची लाखों पाए, ये जेवर वेवर कोई बात नहीं है, तो दोबारा आ सकता है, फिर मिल सकता है, परंतु जान ज्यादा प्यारी है। परंतु कई बार लड़ना चालू कर देते हैं तो वो मार भी डालते हैं और सब कुछ लूट भी लेते हैं। अब जान ही गई तो कौन उनको रोकेगा, तो लूट के चले जाते हैं, मार डालते हैं। अब हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है, तो इसीलिए वहां परखना होता, निर्णय करना होता है कि इस समय हम क्या करें, लड़ें या हम दे दें। तो देना है, भले दो हर्जा नहीं, आपका कम से कम आपका जीवन तो बचेगा। परंतु मान लो वो मेरे धन के पीछे नहीं है पर मेरे चरित्र के पीछे है, तो मैं क्या करूं, हाँ माताएं बताओ क्या करूं, चरित्र दे दो, हाँ नहीं देना है, भले उसमें लड़ना पड़े, भले मर जाऊं, लेकिन चरित्र नहीं देना है। क्यों, क्योंकि चरित्र तो आत्मा का दाग बन जाएगा और वो धन तो हाथों की मैल है, तो अंतर है ना, तो उस अंतर को समझ करके भले लड़ूं, मरना भी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना चरित्र नहीं दूंगी, ये आत्मा की शक्ति है, इसको मैं नहीं छोड़ूंगी, उसके लिए भले मरना पड़े पर लड़ करके मरूंगी। इसका बहुत सुंदर उदाहरण है, दिल्ली में एक केस हुआ था जिसमें दो बच्चे, उनका नाम था चोपड़ा बच्चे, वो टीवी स्टेशन जा रहे थे और कोई दो लड़के उनको मिले और उन्होंने कहा हम आपको लिफ्ट देंगे, तो गाड़ी में लिफ्ट क्या दी, एक जंगल में ले गए और वहां उनसे बलात्कार किया, गलत काम करने की कोशिश की, परंतु वे लड़े और अंत में उनके शव मिले जंगल में, 20-22 एक एक शरीर के ऊपर वो चाकू के निशान थे, मर गए वो। आखिर उनको पकड़ा गया, रंगा और बिला, ये दो मालूम है ना, याद होगा। तो रंगा बिला और उनको फांसी की सजा मिली, क्योंकि किडनैप किया, अपहरण किया और रेप किया, मर्डर किया, तीनों कितने भयंकर अपराध किए और उसी वक्त उनको फांसी की सजा मिली जैसे वो पकड़े गए। तो इसीलिए पर उन बच्चों का कितना मान हो गया, मरणोपरांत भी कितना उनका सारे देश ने मान किया। आज भी उन बच्चों के नाम पर जो वीर बच्चे होते हैं उनको चोपड़ा अवार्ड्स मिलते हैं उन्हीं बच्चों के नाम पर। कितने महान थे वो बच्चे, भले उन्होंने अपनी जान गंवाई लेकिन वीरता दिखाई। तो निर्णय शक्ति का मतलब क्या है कि हम वो उस समय निर्णय करें शिव बाबा से योग लगाकर, जैसे जैसे तराजू होती है उसमें कांटा एकाग्र चाहिए, डंडी सीधी चाहिए और पलड़े समान चाहिए, तब निर्णय सही होगा। तो मन की एकाग्रता चाहिए, शिव बाबा से उस समय योग चाहिए। शिव बाबा अब मैं क्या करूं, गुस्सा नहीं आना चाहिए, मानो उस समय निर्णय शक्ति इतनी तेज हो हम निर्णय कर सके हम किसको महत्व दें। मान अपमान निंदा स्तुति जय पराजय में समान अपने मूल्यों को हम वजन दें, वस्तुओं को वजन ना दें। वस्तु तो छोड़ो तो छूटो, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई हिसाब किताब है चलो पूरा हो गया, किसी जन्म का अगर धन ले गया तो दुखी नहीं होना है। तो हम उस निर्णय के आधार पर शिव बाबा से योग लगा करके अंतरात्मा में वो आवाज आती है, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे करो, परमात्मा की आवाज हमें मिलती है क्योंकि हम उनके गाइडेंस से चल रहे हैं। किसी का पक्षपात नहीं, किसी कोई मोह नहीं, कोई नफरत नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, पर ईश्वर की आवाज से चलते हैं और वो सही निर्णय होता है और उसका परिणाम बहुत सुंदर निकलता है। जीवन हमारा कितना श्रेष्ठ बन जाता है, अगर मर भी गए कोई बात नहीं, अगला जन्म और ऊंचा होगा। शरीर तो एक वस्त्र है, कौन सी बड़ी बात है। यानी इसको हम कहते हैं शक्ति। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति, लेकिन फिर परख शक्ति और निर्णय शक्ति, और फिर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। घबराओ मत, मोह के वश हो जाएंगे तो घबराते रहेंगे, डरते रहेंगे, हाय क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अगर मैं सत्यता के रास्ते पर हूं तो सत्यता की नाव डोलती जरूर है पर डूबती कभी नहीं है, ये हमेशा समझ लो। अगर मेरे अंदर झूठ है, छल है, कपट है और लोभ है तो वो हिलेगी और फिर डूब भी जाएगी, पर सत्यता की नाव कभी नहीं डूबती, भले डोलती जरूर है, तूफान बहुत आएंगे लेकिन वो मंजिल तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि भगवान मेरा साथी है, वो सत्यता का साथी है, ये जरूर हम याद रखें। तो परिस्थिति का सामना, व्यक्ति का सामना मत करो, दो का चार सुनाना ये नहीं, पर परिस्थिति का सामना, क्योंकि जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिनको हमें मेरे सामने होंगी उनका सामना करना है, हम उनको रोक नहीं सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी नजदीकी संबंधी की मृत्यु, बहुत नजदीक था वो, घनिष्ठ था, अब अचानक उसकी मौत हो गई, आप क्या करेंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, छाती पीटेंगे, सिर फोड़ेंगे, दुखी होते रहेंगे, भूखे रहेंगे, रोते रहेंगे सारा साल, क्या करेंगे क्या करेंगे। इसको कहते हैं सामना करने की शक्ति, माना परिस्थिति का सामना, क्योंकि हम उसको रोक नहीं सकते, आखिर एक दिन सबको जाना है, चाहे कितना ही भी वो प्रिय क्यों ना हो। अंत में हम यही कहेंगे, ये आत्मा जहां भी गई शिव बाबा से योग लगाकर कहते शिव बाबा, ये आत्मा जहां भी गए सुखी रहे, क्योंकि मेरा इनके साथ इतना ही हिसाब किताब था। जब हिसाब किताब पूरा होता है कोई किसी का नहीं, चाहे पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, ये सब कर्मों का हिसाब किताब है। तो हमें ये ज्ञान मिलता है, ये समझ है, हम उस परिस्थिति का सामना सहज कर लेते हैं, रोते नहीं है। कई कहते हैं बहन जी रोते रोएंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि हमारा उनसे प्यार था। वास्तव में इसका उलट है, अगर हम रोते हैं ना तो ये सच्चा प्यार नहीं है। आप कहेंगे कैसे नहीं है प्यार, अच्छा रो लो खूब, आएगा तो नहीं वापस, रोने से फायदा होगा और ही नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि वो आत्मा जहां भी गई, आप रोएंगे यहां तो उस आत्मा को भी दुख होगा, क्योंकि मन खींचेगा, उसका भी तो खींचेगा ना, क्योंकि कोई किसको याद करता है तो उसको भी तो याद पहुंचती है ना, और वो वापस तो आ नहीं सकता है, शरीर भी नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। अब हम रोते रहेंगे और वो आत्मा वापस नहीं आ सकती है तो उसको भी तो दुख होगा कि नहीं होगा, और हम क्या चाहते, उसको सुख मिले, और हम दुखी होते रहें तो उसको सुख मिलेगा हा? तो सच्चा प्यार है ये, कहेंगे सच्चा प्यार। तो कई कहते फिर क्या करे, रोना तो आता है। हम कहते नहीं, ये हम अगर चाहते हैं कि उसको शांति मिले तो हम अपने आप को भी शांति में रखें, तब उसको शांति मिलेगी। हम दुखी होंगे तो वो भी दुखी होगा, और अगर हम उसका सुख और शांति चाहते हैं तो उसके लिए मुझे भी शांति में रहना होगा। ठीक है ना, ये कि गलत है बोला हा? यही समझदारी है। और उसकी आत्मा को देखो, देह को क्यों देखते हो, देह तो है ही विनाशी और आत्मा तो है ही अविनाशी, इसलिए दुख भी नहीं करना होता है। परंतु हम साक्षी दृष्टा होकर के इतना ही मेरा हिसाब किताब था ये समझ करके अलविदा करना ही पड़ता है, क्योंकि कर्मों का हिसाब किताब पूरा हुआ, कोई किसी का नहीं इस संसार के अंदर, सबकी टिकट कटनी है एक दिन, है ना? कोई इस शरीर में अमर रहेगा क्या? कोई नहीं, सब रिटर्न टिकट लेकर आए हैं। नहीं लाए कि नहीं रिटर्न टिकट, अभी भी जहां से आई है वहां की रिटर्न टिकट लेके आई होंगी ना, क्योंकि कल जाना है, तो इस संसार की भी रिटर्न टिकट लेकर ही आए हैं हम, ये शरीर से जाना है। तो परिस्थिति का सामना, और फिर है छठी शक्ति है सहयोग की शक्ति। सहयोग एक बहुत बड़ी शक्ति है। कई लोग कहते मैं क्यों सहयोग दूं, वो मुझे सहयोग नहीं देता मैं क्यों दूं। अरे आप सहयोग दो तो वो देगा। कई कहते वो पहले सहयोग दे फिर मैं दूं, वो नहीं देगा तो मैं भी नहीं दूं। पर जो मैं कर्म दूसरों से करवाना चाहता हूं या मैं चाहता हूं दूसरे वो कर्म करे तो पहले मैं करूं। मैं चाहता हूं कि दूसरा शांति में रहे तो मैं शांति में रहूं। स्कूल में टीचर सिगरेट पीता है और बच्चों को कहता है बच्चे सिगरेट मत पियो, तो बच्चे कहेंगे पहले खुद तो नहीं पियो। खुद शराब पिएगा और कहेगा शराब पीना हानिकारक है, तो कौन मानेगा उसका? कौन वही जिस उसका ही माना जाएगा जो खुद एक एग्जाम्पल बनता है, नहीं तो दूसरा क्यों मानेगा। तो जो हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि ये करे पहले मैं करूं, और जो मैं दूसरों से अपेक्षा नहीं करना चाहते नहीं चाहते वो मैं भी न करूं। अब ये है समझ, इसके आधार से मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूं। तो सहयोग देना और लेना एक बहुत बड़ी शक्ति है। कैसे हम सहयोग दें और लें, उसके लिए झुकना पड़ता है। वो एक मिसाल देते हैं ना कि एक बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं कि एक छोटी सांकड़ी पुल थी, पुल होते हैं ना ब्रिज, वो सांकली थी, एक ही के लिए जाने का रास्ता था बस। अब आमने सामने दो बकरियां आ गई, कहानी तो बकरी की सुनाते हैं, अब वो सामने आमने आ गई तो कैसे जाए, उसको वहां आना उसको वहां जाना, तो कैसे जाए, क्योंकि एक ही जा सकता है, दो तो नहीं वहां खड़े हो सकते हैं, एक ही खड़ा हो सकता है केवल। तो दोनों लड़ने लग गए, तो दोनों लड़ते लड़ते आखिर दोनों ही नदी में गिर गई, क्योंकि लड़ने लगी। फिर उसके बाद दूसरी दो बकरियां आई, अब कैसे वो पार करे, तो क्या हुआ, एक झुक गई और दूसरा उसके ऊपर कूद गई, दोनों बच गई। तो कैसे पार किया, एक को तो झुकना पड़े ना, अगर एक भी न झुके तो लड़ो और मरो। जंगलों में आग क्यों लगती है, क्यों लगती है जंगलों में आग, क्योंकि सूखे जो बांस की लकड़ियां होती है ना, सूखी, बारिश बारिश नहीं पड़ी तो सूखी लकड़ियां हो जाती है बांस की, वो सीधी खड़ी हो जाती है। हरी बांस होती है ना वो झुकती है, हरी बांस वो कितने अच्छा लगता है, झुकती है वो मुड़ते हैं, परंतु जो सूखी बांस की लकड़ी होती है वो झुकती नहीं, सीधी खड़ी होती है। और फिर जब हवा का झोंका आता है तो आपस में टकराती है, और जैसे टकराती है तो उसमें से आग निकलती है, और जंगलों के जंगल जल जाते हैं आग में, क्योंकि सूखी बांस की लकड़ियां। तो इंसान भी क्या है, सूखे बांस की लकड़ी की तरह, झुकना आता नहीं, झुकना नहीं आया, झुकना तो ये चेतनता है, और अकड़ के चलना ये तो मुर्दे की निशानी है, क्योंकि मुर्दा अकड़ा हुआ होता है। तो राजयोग के माध्यम से हम एक दो को सहयोग देते हैं, ईश्वर को बीच में रखते हैं, जैसे एक मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट अगर बीच में है और कई सुइयां बिखरी हुई है तो वो मैग्नेट चुंबक रखा, सब सुइयां आकर्षित होकर के आ जाती है, और आकर्षित होकर के चुंबक को लग जाती है, और जैसे ही मैग्नेट उतरा निकला सब सुइयां बिखर जाती है। तो हम क्यों एक दो से अलग हो गए हैं, क्योंकि उस ईश्वर से योग हमारा टूट गया है, अब उससे हमारा संबंध हो गया, तो हम एक दो को सहयोग क्यों नहीं देंगे, क्योंकि हम ईश्वर का ही तो कार्य कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर आते हैं, कहते इतना अच्छा यहाँ सब व्यवस्था है, ये लोग कैसे होता है, ये कैसे करते हैं आप लोग। एक बहन आई हमारे पास, हमको कहती है, बहन जी एक पर्सनल बात आपसे पूछूं। मैंने कहा पूछो। तो कहती आप लोग इतनी बहनें यहाँ रहती हो, कभी आपस में लड़ती नहीं हो, हमारे से प्रश्न किया। तो मैंने कहा देखो बहन जी एक बात बताऊं, लड़ना तब होता है जब ये तेरा ये मेरा, है ना, घर में भी होता है, ये तेरा ये मेरा, अपना खाना पकाओ मैं अपना खाना पकाओ, ये मेरे बच्चे ये तेरे बच्चे, पार्टीशन बीच में कर देंगे, ये तेरा ये मेरा। ये जब तेरा मेरा होता है वहां तू तू मैं होता है, तू तू मैं झगड़ा होता है। अब यहां पर हम लोगों को यही शिक्षा दी जाती है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब भगवान का है। तो सबको ये समझ है कि मेरा कुछ नहीं है, ये ईश्वर का है, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों होगा। और दूसरी बात, क्यों लड़ना झगड़ना होता है, क्योंकि हम समझते हैं मेरा काम बड़ा इनका काम छोटा, ये मेरे आगे झुके, ये मेरा नौकर है, मैं सेठ हूं, ये कौन होता है मुझे ऐसे कहने वाला, क्या समझता है ये। यहां पर ऐसे नहीं है, चाहे कोई यहाँ देखो सफाई करने वाला है या कोई भी कार्य करने वाला, हम भाषण करने वाले हैं, हम ऑर्डर नहीं चला सकते हैं किसी पर, क्योंकि वो भी अपना जीवन समर्पित कर चुका है भगवान को, हम भी अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं भगवान को, एक ही पिता की संतान है। तो यहाँ जो भी किसी को ड्यूटी है, ये डिग्निटी ऑफ वर्क है, हर एक कार्य यहाँ महान है, चाहे बर्तन मांजो चाहे भाषण करो, बर्तन मांजना भी उतना ही महान कार्य है जितना भाषण करना। इसलिए देखेंगे बड़े लोग है ना, कई बड़े लोग कभी घर में पानी का ग्लास भी किचन में जाके नहीं उठा के पियेंगे, इतना नौकर चाकर चारों ओर होते हैं, लेकिन वो ही बड़े लोग मंदिर में जाएंगे, गुरुद्वारे में जाके खुद प्याऊ के पास बैठ के पानी देते हैं, बर्तन साफ करते हैं, वो सरोवर साफ करते हैं। क्यों? घर में कुछ नहीं करेंगे काम, पर समाज की सेवा जाके बहुत करेंगे। क्यों करते हैं? क्योंकि समझते ना, ये सेवा है, ये धंधा नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है, ये कोई कमाने की बात नहीं है। तो नौकर सेठ का यहाँ हिसाब ही नहीं है, ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं, सब समर्पित हैं। इसलिए झगड़ा करने की तो बात ही नहीं है। कई हमसे पूछते हैं कि एक आया भाई, हम उससे पूछता है, बहन जी आपको तनख्वाह कितनी मिलती है? मैंने कहा इतना, इतनी तनख्वाह मिलती, इतनी तनख्वाह मिलती है जो कोई किसी को दुनिया में दे ही नहीं सकता है, इतनी यहाँ तनख्वाह मिलती है। क्या तनख्वाह मिलती है? मानव से देव बन जाते हैं। तनख्वाह यानी कहने का भाव क्या है कि ये तनख्वाह लेकर के हम यही चुप तो थोड़ी करेंगे। समझो, दो घंटा मैंने भाषण किया और आपने एक एक सौ सौ रुपया मेरे आगे रखते गए, तो यहाँ पे हिसाब किताब यही चुत्तू हो गया। परंतु हम कहते नहीं, ये तो ईश्वर का कार्य हम करते हैं। ये ज्ञान धन का मूल्य सौ रुपए में हो सकता है क्या? हो सकता है? उसका मूल्य कर सकते हैं कि मैं भाषण करूं और इतना एक एक सौ रुपया टिकट यहाँ लगाऊं? ये भाषण ये की टिकट नहीं लगती है यहाँ। तो फिर कई कहते हैं, बहन जी यहाँ की फीस क्या है? हम कहते हैं यहाँ की फीस है पांच खोटे पैसे, वो भगवान को दे के जाओ, दान करके जाओ, ये फीस है यहाँ की। और यहाँ से ज्ञान रतन लेकर के जाओ, क्योंकि जो भी कुछ देंगे वो आपका ही भाग्य बनेगा। चाहे एक रुपया दो, दस रुपया दो, सौ रुपया दो, हजार दो, एक लाख दो, जैसी कमाई वैसी सेवा। मानो धन से सेवा करते हैं, कोई तन से करते हैं, कोई मन से करते हैं, कोई अपने कला से करते हैं, ये सेवा की भावना है। यहाँ उनका भाग्य उस सेवा के आधार पर बनता है। ये नहीं कि एक रुपया दिया तो कम भाग्य बना, सौ दिया तो ज्यादा बना, एक लाख दिया तो और बना, नहीं। कमाई कितनी है, कितनी उनकी क्षमता है, उस अनुसार जितना किया उसका भाग्य बना। तो इसीलिए हर एक का यहाँ सहयोग है, तो ये कितनी बड़ी शक्ति बन जाती है। और फिर अंत में दो और शक्तियां बताई है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। जैसे कछुआ अपने अपने अंगों को अंदर में ले लेता है, और कोई यात्री यात्रा पर जाता है तो बिस्तरा और पेटी, सूटकेस, ये सब भरता है यात्रा पर जाने के लिए। इसी प्रकार राजयोग के माध्यम से हमारे अंदर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति आती है। कितनी बातें होगी लेकिन चलो कोई बात नहीं, ड्रामा। शिव बाबा हमें क्या कहते हैं, तीन बिंदु लगाओ। कोई बहुत या हॉट आर्ग्यूमेंट हो, ये हो, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, मैं आत्मा, ये भी आत्मा, बिंदु लगा दो। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, एक ईश्वरीय परिवार है, बिंदु लग गया। एक एक के गुणों को देखते हैं, अवगुणों को नहीं देखते हैं, एक एक की विशेषता सोचते हैं, एक एक के अंदर सेवा की भावना है, देने की भावना है, और जो बीत गया उसको रिपीट नहीं करते, वो ड्रामा हो गया, वो रील में लिपट गया, फिर कलप के बाद आएगा। इसीलिए अभी इसका सोचने की जरूरत ही नहीं, अभी इस रूप में, इस कलप में वापस नहीं आएगा। तो इसको कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, फुल स्टॉप, बिंदु, पूर्ण विराम लगाने की शक्ति। शिव बाबा से योग लगा करके बिंदु, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप, शिव बाबा सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान, और एकदम शक्ति रूप हो गए। और फिर समेटने की शक्ति, जैसे कोई यात्रा पर जाता है तो सारे घर का सामान नहीं ले जाता है, आप लोग घर से आए, चार पांच दिन का सामान लेकर आए, कपड़े ले आए, जो कुछ चीज आवश्यक थी वो लाए, बाकी घर तो आपका है, वो चीजें हैं आपके घर में। इसी प्रकार हम भी एक यात्रा पर जा रहे हैं, वापस परमधाम आत्मा को जाना है, और जिस स्थिति में आए थे उसी स्थिति में वापस जाना है, शुद्ध होकर जाना है, हल्के होकर जाना है। कहते ना ट्रैवल लाइट, बहुत ज्यादा सामान लेकर के नहीं भर लेके जाना होता है, बहुत मुश्किलात होती है, कितना सामान कहाँ ढोते रहेंगे, बहुत आवश्यक है वही लेते हैं। तो शिव बाबा ने हमें तीन चीजें दी है, जैसे कोई यात्रा पर जाता है तो एक हैंडबैग होता है, साथ में हैंडबैग, फिर एक सूटकेस होती है, और लंबी यात्रा होती है और काफी दिनों तक वहां रहना होता है तो एक होल्ड ऑल होता था पहले जमाने में, होल्ड ऑल में सब चीजें डाल देते थे, वो रास्ते में नहीं खोलते थे, वो जब मंजिल पर पहुंचे तब जाके खोलते थे, नहीं होल्ड ऑल इतना बड़ा या बहुत बड़ी पेटी उसको नहीं खोलते थे। हैंडबैग बार बार खोलना होता है, सूटकेस कभी कभी खोलना होता है, और होल्ड ऑल ये मंजिल पर ही खोलना होता है, बीच में नहीं। तो आत्मा के अंदर भी तीन चीजें हैं, कौन सी? आत्मा क्या है? मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का समूह है, इन तीनों की का चेतन रूप है। अब मन, बुद्धि, संस्कार ही आत्मा के साथ जाएगी, बाकी कुछ नहीं जाएगा। तो मन क्या है? हमारा हैंडबैग, हाथ में हैंडबैग लेते हैं ना, माताओं को तो हैंडबैग लेने की आदत है, उसमें सब दवाई डालेगी, पैसे डालेगी, चाबियां डालेगी, मतलब वो हैंडबैग वो बार बार खोलना पड़ता है, दवाई बार बार लेनी है, कुछ चाहिए, पैसा बार बार चाहिए, वो पेटी से थोड़ी निकालेंगे। तो इसीलिए मन माना हमारी हैंडबैग, उसमें आवश्यक बातें क्या भरो जो बार बार चाहिए, वो है ज्ञान की पॉइंट्स, ज्ञान की पॉइंट्स, ये आत्मा में बार बार सोचने चाहिए, इस समय कौन सी पॉइंट चाहिए, इस समय क्या करना है, इस समय क्या करना है, क्योंकि बार बार सोचना पड़ता है। तो इतना बाबा ने ज्ञान दिया है हमें, उसका हर कर्म में उसको उसका उपयोग करो, ये है मन में हर वक्त ज्ञान की बातें सोचो, उनका मनन चिंतन करो। फिर बुद्धि है हमारा सूटकेस, और बुद्धि में क्या भरो? गुण और शक्तियां भरो, इस समय कौन से गुण की जरूरत है, इस समय कौन सी शक्ति की जरूरत है। जब सहन करना है तो सामना नहीं करो, और जब परिस्थिति का सामना करना है तो सहन नहीं करो, डरो मत। इसीलिए किस समय कौन सा गुण, कौन सी शक्ति की आवश्यकता है, वो परमात्मा की याद से परख कर, निर्णय कर, फिर उस शक्ति या गुण को यूज करो, ये राजयोग से हमारे अंदर आता है। और जो होल्ड ऑल है उसमें सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म भरते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छे कर्म करके अपने संस्कारों में भरते जाओ, वो चिंता नहीं करो, मैंने इतना अच्छा किया, मैंने ये अच्छा किया, मैंने किया, किसी को पता भी नहीं चला, ये सोचो नहीं। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा कर्म किया तो वर्णन करने की जरूरत नहीं है, और गलत काम किया तो सच बता दो, ये गलती हो गई। पर दुनिया में उल्टा करते, अच्छा काम किया तो सबको बताएंगे, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, और गलत किया तो छिपाएंगे। गलत किया तो बताओ कि गलती की, तो आधी सजा माफ हो जाएगी, उस गलती की सजा माफ हो सकती है अगर सच बता दिया तो। और अगर अच्छा काम किया तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है, वो भगवान जानता है, वो फल देने वाला तो ईश्वर है, इंसान से क्या लेना। नेक कार्य करने के लिए समय भी मत लगाओ, कल तक मत छोड़ो, कल करूंगा कल करूंगा, तो कल तो कभी आता ही नहीं है। और बुरा काम करने की जहां बात आती है, भले उसको कल तक पोस्टपोन करो, गुस्सा करने की इच्छा है, चलो कल करूंगा, तो इसको कहते हैं सत्कर्म, श्रेष्ठ कर्म आत्मा के संस्कार में भरते जाओ और वो कहाँ काम आएंगे, उस नई सत्युग की दुनिया में काम आएंगे। आत्मा परम धाम जाएगी तो परम धाम में भगवान भी हमको सलाम करेगा, इतना सम्मान देगा, क्योंकि अच्छे कर्म हम अपने संस्कार में भर के गए हैं, शुद्ध बन के गए हैं। तो उसके आधार से ये जीवन भी श्रेष्ठ और जन्म जन्म श्रेष्ठ। ठीक है, तो हर एक अपने से पूछे कि मेरे अंदर कौन सी शक्ति की कमी है। सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, सामना करने की शक्ति है, सहयोग शक्ति है, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति है, समेटने की शक्ति है। अगर नहीं है तो ये राजयोग से भरते जाओ, अपने ज्ञान मनन चिंतन से परमात्मा से संबंध जोड़ने से उनसे ये शक्ति अपने अंदर भरते जाओ, तो ये जन्म और जन्म जन्म अपना श्रेष्ठ बना सकोगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम इसका अनुभव करेंगे थोड़ी देर के लिए, शक्ति स्वरूप बनकर के बैठे, माया जीत, विकर्मा जीत बनकर बैठे, मैं आत्मा शुद्ध स्वरूप हूं, मेरे अंदर पवित्रता की शक्ति है, शांति की शक्ति है, प्रेम की शक्ति है, सारे सद्गुण हैं मेरे अंदर, क्योंकि मेरा योग ईश्वर के साथ है, वही मेरा सच्चा सहारा है। शिव बाबा से योग लगाते समय अंतर में चिंतन करो, श्रेष्ठ चिंतन, मैं कौन हूं और किसकी संतान हूं, मैं क्यों हूं इस सृष्टि पर और मुझे कहां जाना है। सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान, मैं आत्मा शक्ति रूप हूं, शक्ति स्वरूप, इस संसार को मैं खेल समझूं, एक नाटक शाला समझूं, रंगमंच समझो, मुसाफिर खाना समझो, और मैं आत्मा इस संसार में मेहमान हूं, एक पंछी हूं, परदेसी हूं, मेरा मूल वतन तो शांति धाम है, बेहद की दुनिया है, प्रकृति की हदों से पार, उस सुनहरे लाल प्रकाश के महतत्व में मैं आत्मा
अपने परम पिता के साथ हूँ। जो सर्वशक्तिमान है, ज्ञान का सूर्य है, अति शक्तिशाली है, मुझ आत्मा के सर्व संबंध उनके साथ है। सर्वशक्तिवान शिव पिता की संतान, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ। शक्ति स्वरूप सर्व बंधनों से मुक्त हूँ। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। शिव बाबा के तेजोमय प्रकाश को मैं भीतर अपने अंदर भर रही हूँ। शक्ति का अनुभव हो रहा है, ये कैसी न्यारी और प्यारी अवस्था है। शिव बाबा से शक्ति पाकर मैं आत्मा धन्य हो गई। हल्के हो गए, सारा बोझ शिव बाबा को दे दिया। शिव बाबा की गोद में समा गए, उनकी छत्र छाया मुझ आत्मा के लिए ऐसा श्रेष्ठ कवच है। जो मुझे सुरक्षित रखता है, मैं माया जीत हूँ, प्रकृति जीत हूँ, एकदम निरसंकल्प। भगवान के प्यार में खो जाऊं। प्यारे शिव बाबा, आप ही मेरे सर्वस्व, अति सुंदर हो, कल्याणकारी हो, बिंदु में सिंधु हो, सर्वशक्तिमान हूँ। शिव बाबा के प्यार में खो जाओ। कितनी शक्ति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में स्थित हूं। इसी शक्ति को स्वयं में भरपूर कर वापिस लौटे और कर्म में इन शक्तियों का प्रयोग करें। तभी ये जीवन शक्तिशाली कहलाएगा। ओम।